एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudadventist.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudadventist.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से।
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
तेरे नाम की स्तुति हो, हे जीवन दाता, तेरे सम्मुख आते हम, हे स्वर्ग पिता, तेरे नाम की स्तुति हो। Aa कोई नहीं स्वर्ग में या पृथ्वी में।
समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर परमेश्वर का सेवक परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूँ। आइए हम परमेश्वर का वचन सुनने से पहले उससे प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हमारे मनों को हमारे हृदयों को खोल दे जैसे हम तेरे वचनों को सुनने जा रहे हैं। पिता परमेश्वर, विशेषकर मेरे श्रोताओं के संग हो, उन्हें तेरा पवित्र आत्मा से अगुवाई कर, उन्हें चला ताकि वे तेरे वचनों को सुन करके समझ सके और तेरे मार्ग में चलने सके। मेरे संग हो पिता, तेरा पवित्र आत्मा दे, तेरा सामर्थ दे ताकि मैं तेरे वचनों को तेरे सामर्थ द्वारा बतला सकूं। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, सुन और ग्रहण करें, आमीन। प्यारो, आज का मेरा संवाद का शीर्षक है अब्राहम कनान में। हम अब्राहम के विषय में पढ़ रहे हैं। परमेश्वर ने उसे कनान देश में कब्जा करने के लिए बुलाया और आशीष देने की प्रतिज्ञा दिया। हाल ही में वह मिस्र देश चला गया था क्योंकि वहां पर वारिस की कमी हुई थी और उसके जानवरों को, भेड़ बकरियों को चारागाह की जरूरत थी। वहां से वह लौट करके आया, वहां पर अजीब तरह से परमेश्वर उसे बचाया, उसकी रक्षा किया। अब अब्राहम कनान लौट आया था, पशुओं और चांदी और सोने में बहुत धनी हो गया था। वह लूत अभी भी उसके साथ था, लूत उसका भाई का बेटा था, और वे फिर से बेथेल आए और उस बेदी के पास अपने तंबू गाड़े जिसे उन्होंने पहले ही स्थापित कर लिया था। उन्होंने जल्द ही पाया कि संपत्ति बढ़ने से मुसीबतें भी बढ़ती हैं। कठिनाइयों और परीक्षाओं के बीच वे सद्भाव से एक साथ रहते थे, लेकिन उनकी स्मृति में उनके बीच कलह का खतरा मंडरा रहा था। चरागाह दोनों के झुंडों और मवेशियों के लिए पर्याप्त नहीं था और चरवाहों के बीच अक्सर होने वाले विवादों को उनके स्वामियों के पास निपटारे के लिए लाया जाता था। यह स्पष्ट था कि उन्हें अलग होना पड़ेगा। अब्राहम लूत से उम्र में बड़ा था और रिश्ते, धन और पद में उसे श्रेष्ठ था। फिर भी शांति बनाए रखने की योजना बनाने वाला वह पहला व्यक्ति था। यद्यपि सारी भूमि स्वयं परमेश्वर ने उसे दे दी थी, उसने विनम्रता पूर्वक इस अधिकार को त्याग दिया और वह अपने भतीजा लूत से कहता है, मेरे और तेरे बीच तथा मेरे चरवाहों और तेरे चरवाहों के बीच कोई झगड़ा ना हो, क्योंकि हम भाई हैं। वह कहता है, क्या सारा देश, क्या पूरा देश तेरे सामने नहीं है? तुम सब देश को देख सकते हो। मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाएं हाथ की ओर जाएगा तो मैं दाएं हाथ की ओर जाऊँगा, या यदि तू दाएं हाथ की ओर जाना चाहेगा तो मैं बाएं हाथ की ओर जाऊँगा। प्यारो, यहाँ अब्राहम की महान निस्वार्थ भावना का प्रदर्शन हुआ है। ऐसी ही परिस्थितियों में कितने लोग हर हाल में अपने व्यक्तिगत अधिकारों और प्राथमिकताओं से चिपके रहते हैं। वे पहले अपने विषय में सोचते हैं, लेकिन यहाँ पर अब्राहम अपने भतीजा लूत के विषय में सोचा, उसको पहला मौका दिया, उसको पहला अवसर दिया। कितने परिवार इस प्रकार बिखर गए हैं जब वे स्वार्थ को सोचते हैं। कितने लोग, कितने समूह विभाजित हो गए हैं, कितने चर्च विभाजित हो गए हैं, जिससे सत्य का मार्ग दुष्टों के बीच उपहास और निंदा का पात्र बन गया है। अब्राहम ने कहा, मेरे और तुम्हारे बीच कोई कलह ना हो, क्योंकि हम भाई हैं। ना केवल जन्म जन्मजात रिश्ते से बल्कि सच्चे ईश्वर के उपासक होने के नाते भी वह उससे बड़ा था, वह उससे श्रेष्ठ था। संसार भर में ईश्वर के बच्चे एक परिवार हैं और प्रेम और मेल मिलाप की एक ही भावना उन पर शासन करनी चाहिए। कृपा पूर्वक रहो, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, एक दूसरे का आदर करो, कहता है रोमियो 12:10 में। यहाँ पर पौलुस प्रेरित रोमियो की मंडली को यह सलाह देता है कि भाईचारे से रहो, कृपा पूर्वक रहो, यही हमारे उद्धारकर्ता की शिक्षा है। प्यारो, एक समान शिष्टाचार का पालन करना, दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करने की इच्छा रखना जैसा हम चाहते हैं कि वे हमारे साथ करें, जीवन की आधी बुराइयों को दूर कर देगा। स्वार्थ की भावना शैतान की भावना है, परंतु जिस हृदय में मसीह का प्रेम पोषित होता है, जिस हृदय में मसीह का प्रेम पोषित होता है, उसमें स्वार्थ रहित प्रेम की भावना होती है। ऐसे लोग परमेश्वर के इस आदेश का पालन करेंगे, अपने कामों की ओर मत देखो परंतु दूसरों के कामों की ओर भी देखो, जैसा कि हम पढ़ते हैं फिलिपियों 2:4 में। हालांकि लूत की समृद्धि अब्राहम के साथ उसके संबंध के कारण थी, फिर भी उसने अपने उपकारी के प्रति कोई कृतज्ञता नहीं दिखाई। शिष्टाचार के अनुसार उसे अब्राहम को चुनाव करने देना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय उसने स्वार्थवश इसके सभी लाभों को हथियाने का प्रयास किया। उसने अपनी आंखें ऊपर उठाई और यर्दन के मैदान को देखा, वह हर जगह अच्छी तरह से सींचा हुआ था, मानो यहोवा का बाग हो मिस्र देश के समान, जैसे तुम ज्वार की ओर जाते हो, ज्वार की ओर आते हो। स्वार्थ से हम पहले अच्छे चीजों को चुन सकते हैं, परंतु ईश्वर की आशीष से ही वह आगे बढ़ सकता है। अब स्वार्थी से धर्मी व्यक्ति पीछे चुन सकता है, लेकिन वह यीशु के आशीष से आगे बढ़ सकता है। ईश्वर ही सब आशीषों को देने वाला है। सब भली वस्तु परमेश्वर से ही हमें मिलती है। पूरे फिलिस्तीन में सबसे उपजाऊ क्षेत्र यर्दन घाटी थी, जो देखने वालों को खोए हुए स्वर्ग की याद दिलाती थी, और नील नदी से समृद्ध उन मैदानों की सुंदरता और उत्पादकता के बराबर थी जिन्हें वे कुछ ही समय पहले छोड़कर आए थे। वहां धनी और सुंदर शहर भी थे जो अपने भीड़ भाड़ वाले बाजारों में लाभदायक व्यापार के लिए आमंत्रित करते थे। संसारिक लाभ के लालच में चूर लूत ने वहां मिलने वाली नैतिक और आध्यात्मिक बुराइयों को नजरअंदाज कर दिया। मैदान के निवासी यहोवा के सामने अत्यंत पापी थे, लेकिन वह इससे अनभिज्ञ था, या जानते हुए भी उसने इसे महत्व नहीं दिया। उसने लूत ने यर्दन का सारा मैदान चुन लिया और सदोम की ओर अपना तंबू गाड़ा। उस स्वार्थी चुनाव के भयानक परिणामों का उसे जरा भी अंदाज नहीं था। बाद में उसे कष्ट सहना होगा, बाद में उसे दुख उठाना पड़ेगा। लूत से अलग होने के बाद अब्राहम को फिर से प्रभु से पूरे देश का वादा मिला। इसके तुरंत बाद वह हेब्रोन चले गए और ममरे के बलूत के पेड़ों के नीचे अपना तंबू गाड़ा और उसके पास प्रभु के लिए एक बेदी बनाई। उन ऊंचे मैदानों की खुली हवा में जैतून के बागों और अंगूर के बागों लहरा रहे थे और लहराते अनाज के खेतों और चारों ओर की पहाड़ियों के विशाल चारागाहों के बीच वह अपने सरल पितृ सत्तात्मक जीवन से संतुष्ट होकर रहे और लूत के लिए सदोम की घाटी के खतरनाक विलासितापूर्ण जीवन को छोड़ दिया। अब्राहम को आसपास के राष्ट्रों द्वारा एक शक्तिशाली राजकुमार और एक बुद्धिमान एवं सक्षम सरदार के रूप में सम्मानित किया जाता था। प्यारों, उन्होंने अपने पड़ोसियों से अपना प्रभाव नहीं छिपाया। मूर्ति पूजकों के विपरीत उनका जीवन और चरित्र एक अलग ही प्रभाव डालता था। सच्चे धर्म के पक्ष में उनका प्रभाव स्पष्ट था। ईश्वर के प्रति उनकी निष्ठा अटूट थी, वहीं उनकी मिलन सारिता और परोपकारिता ने विश्वास और मित्रता को प्रेरित किया और उनकी सहज महानता ने आदर और सम्मान अर्जित किया। उनके धर्म को किसी अनमोल खजाने की तरह नहीं मानी जाती थी, जिसे केवल उसके स्वामी द्वारा ही सहेज कर रखा जाए। सच्चे धर्म को इस प्रकार नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा भाव सुसमाचार के सिद्धांतों के विपरीत है। सच्चे धर्म को हम छिपा करके भी नहीं रख सकते हैं। जब तक मसीह हृदय में निवास करते हैं, उनकी उपस्थिति के प्रकाश को छिपाना या उस प्रकाश का मंद पड़ना असंभव है। इसके विपरीत यह प्रकाश दिन प्रतिदिन और भी उज्जवल होता जाएगा, क्योंकि स्वार्थ और पाप के वे कोहरे जो आत्मा को घेरे हुए हैं, धर्म के सूर्य की उज्जवल किरणों द्वारा छटते जाते हैं। जब हमारे अंदर सुसमाचार है, ज्वलंत है, तो हम उसको परमेश्वर की शक्ति के द्वारा दूसरों को बांटेंगे, दूसरों को हम दर्शाएंगे और चमकाएंगे दूसरों तक। परमेश्वर के लोग पृथ्वी पर उनके प्रतिनिधि हैं और उनका इरादा है कि वे इस संसार के नैतिक अंधकार में प्रकाश बने। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम जगत के ज्योति हो, अपने लोगों को यह कहते हैं, और कहते हैं कि उनका ज्योति उन्हें चमकाना है, ताकि उनके अच्छे कामों को देख करके लोग परमेश्वर को जाने और परमेश्वर की महिमा करें। देश भर में, कस्बों, शहरों और गांवों में फैले हुए वे परमेश्वर के साक्षी हैं। वे माध्यम हैं जिनके द्वारा वह अविश्वासी संसार को अपनी इच्छा का ज्ञान और अपनी कृपा के चमत्कारों से अवगत कराएंगे। यही काम अब्राहम कर रहा था। यह उनकी योजना है कि महान उद्धार के सभी भागीदार उनके लिए प्रचारक बने। मसीह की शक्ति वह मानक है जिसके द्वारा संसारिक लोग सुसमाचार का मूल्यांकन करते हैं। धैर्यपूर्वक सहन की गई परीक्षाएं, कृतज्ञतापूर्वक प्राप्त आशीर्वाद, नम्रता, दया, करुणा और प्रेम जो नियमित रूप से प्रदर्शित किए जाते हैं, वे प्रकाश हैं जो संसार के सामने चरित्र में चमकते हैं और स्वाभाविक हृदय के स्वार्थ से उत्पन्न अंधकार के विपरीत प्रकाश प्रकट करते हैं। आस्था में समृद्ध, उदारता में महान, आज्ञाकारिता में अडिग और अपने तीर्थ यात्रा जीवन की सादगी में विनम्र अब्राहम कूटनीति में भी कुशल और युद्ध में साहसी और निपुण थे। यद्यपि वे एक नए धर्म के शिक्षक के रूप में जाने जाते थे, फिर भी तीन शाही भाइयों जो अमोरी मैदानों के शासक थे, जो उस इलाका के खास लोग थे जहां अब्राहम इस समय रहते थे, उन्होंने अधिक सुरक्षा के लिए उनके साथ गठबंधन करने का निमंत्रण देकर अपनी मित्रता प्रकट की। उन्होंने अब्राहम के साथ गठबंधन किया क्योंकि देश हिंसा और उत्पीड़न से भरा हुआ था। जल्द ही उन्हें इस गठबंधन का लाभ उठाने का अवसर मिला। 14 वर्ष पूर्व एलाम के राजा चेदोरला ओमेर ने कनान पर आक्रमण किया था और उसे अपना अधीन बना लिया था। अब कई राजकुमारों ने विद्रोह कर दिया और एलाम के राजा ने अपने 4 सहयोगियों के साथ उन्हें अधीन करने के लिए फिर से देश पर आक्रमण किया। कनान के 5 राजाओं ने अपनी सेनाएं एकजुट की और सिद्दीम की घाटी में आक्रमणकारियों का सामना किया, लेकिन उन्हें पूरी तरह से पराजित होना पड़ा। सेना का एक हिस्सा टुकड़े टुकड़े हो गया और जो बच निकले वे सुरक्षा के लिए पहाड़ों की ओर भाग गए। विजेताओं ने मैदानी इलाकों के शहरों को लूटा और भारी मात्रा में लूट का माल और कई कैदियों को लेकर चले गए, जिनमें से लूत और उसका परिवार भी शामिल था। ममरे के बलूत के जंगलों में शांति से रह रहे अब्राहम को एक भगोड़े से युद्ध की कहानी और अपने भतीजे पर आई विपत्ति के बारे में पता चला। लूत की कृतघ्नता की कोई बुरी याद उनके मन में नहीं थी। उनके मन में लूत के लिए स्नेह जागृत हुआ और उन्होंने उसे बचाने का निश्चय किया। सर्वप्रथम ईश्वर से सलाह लेकर अब्राहम ने युद्ध की तैयारी की। अपने शिविर से उन्होंने 318 प्रशिक्षित सेवकों को बुलाया जो ईश्वर के भय में अपने स्वामी की सेवा में और शस्त्र यंत्रों के अभ्यास में प्रशिक्षित थे। उनके साथी ममरे, एस्कॉल और अनेर, ये तीन खास लोग भी अपने अपने दल के साथ उनके साथ शामिल हो गए और आक्रमणकारियों का पीछा करने निकल पड़े। एलामी और उनके सहयोगी कनान की उत्तरी सीमा पर स्थित दान में डेरा डाले हुए थे। विजय के उत्साह में और पराजित शत्रुओं के आक्रमण के भय से मुक्त होकर वे जश्न मनाने में मगन थे। कुलपति अब्राहम ने अपनी सेना को अलग अलग दिशाओं से विभाजित किया और रात में शिविर पर धावा बोल दिया। उनका हमला इतना जोरदार और अप्रत्याशित था कि उन्हें तुरंत विजय प्राप्त हुई। एलाम का राजा मारा गया और उसकी भयभीत सेना पूरी तरह से पराजित हो गई। लूत और उसका परिवार सभी कैदियों और उनके सामान सहित वापस आ गए और विजेताओं के हाथ में एक समृद्ध लूट का माल लगा। परमेश्वर की कृपा से यह विजय अब्राहम को ही मिलनी चाहिए थी। यहोवा के उपासक ने न केवल देश की महान सेवा की बल्कि स्वयं को एक वीर पुरुष भी साबित किया। यह देखा गया कि धर्म कायरता नहीं है और अब्राहम के धर्म ने उन्हें न्याय का समर्थन करने और पीड़ितों की रक्षा करने में साहसी बनाया। उनके इस वीर कार्य ने उन्हें आसपास के कबीलों में व्यापक प्रभाव दिलाया। उनकी वापसी पर सदोम का राजा अपने दल के साथ विजेता का सम्मान करने आया। उसने उन्हें सम्मान ले जाने के लिए कहा और केवल यही विनती की कि कैदियों को वापस कर दिया जाए। युद्ध के नियमों के अनुसार लूट का माल विजेताओं का था, लेकिन अब्राहम ने यह अभियान लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं शुरू किए थे प्यारों, और उसने दुर्भाग्यपूर्ण लोगों का फायदा उठाने से इनकार कर दिया। केवल यह शर्त रखी कि उसके सहयोगियों को उनका उचित हिस्सा मिले। यदि ऐसे इम्तिहान में डाला जाता तो बहुत कम लोग अब्राहम की तरह महानता प्रदर्शित कर पाते, बहुत कम लोग प्रलोभन का विरोध कर पाते। इतनी बड़ी लूट हासिल करने के लिए वे अब स्वार्थी नहीं दिखाते। उनका उदाहरण स्वार्थी और लालची लोगों के लिए एक फटकार है। अब्राहम ने न्याय और मानवता के सिद्धांतों का सम्मान किया है। उनका आचरण ईश्वरीय उपदेश तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर को दर्शाता है, जैसा कि हम पाते हैं लव व्यवस्था 19:18 में। उन्होंने कहा, मैंने यहोवा परमपिता परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी से यह प्रतिज्ञा की है कि मैं एक धागे से लेकर जूते के फीते तक कुछ नहीं लूंगा और तेरा कुछ भी नहीं लूंगा। ऐसा ना हो कि तू कहे कि मैंने अब्राहम को धनवान बनाया है। उन्होंने उन्हें यह सोचने का कोई अवसर नहीं दिया कि उन्होंने लाभ के लिए युद्ध किया था या अपनी समृद्धि का श्रेय उनके उपहारों या कृपा को दिया था। परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष देने का वादा किया था और महिमा उन्हीं को दी जानी चाहिए। अब्राहम पूरी तरह से परमेश्वर में विश्वास और भरोसा करता था। विजयी कुलपति का स्वागत करने वालों में से एक सलेम का राजा मेल्किसेदेक भी था, जो अपनी सेना के लिए रोटी और दाख मधु लेकर आया था सर्वोच्च परमेश्वर के पुजारी वह था, और उसके रूप में उसने अब्राहम को आशीर्वाद दिया और प्रभु का धन्यवाद किया जिसने अपने सेवक के द्वारा इतना बड़ा उद्धार किया था। और अब्राहम ने अपनी सारी संपत्ति का दसवां हिस्सा उस पुजारी, उस याजक मेल्किसेदेक को दे दिया। यहाँ पर हम देखते हैं अब्राहम दसवांश लौटाता है, परमेश्वर को धन्यवादी दिखाता है। प्यारो, हम यहाँ पर सीख सकते हैं कि अब्राहम लूत को बचाने के लिए कभी पीछे नहीं हटा। जो भी कि लूत उस समय चुनाव करने समय वह पहले लिया, अब्राहम को पहले चुनने को मौका नहीं दिया, और जब जीत हासिल किया विजेता के रूप में आने के बाद भी अब्राहम धन का लालच नहीं किया, केवल वह कहा लूत को दे दे और उनके सहयोगियों को जो उनका हिस्सा बनता है उनको दे दे, लेकिन मैं कुछ भी लूट का भाग धन नहीं लूंगा। वह परमेश्वर में भरोसा करता था, वह विश्वास करता था कि परमेश्वर ही उसे धनवान बनाता है, परमेश्वर ही उसे आशीष देने की प्रतिज्ञा की थी और वही उसको धनवान बनाएगा और आशीष देगा, यह अब्राहम का भरोसा था। प्यारो, आइए हम इसी तरह का निस्वार्थ जीवन जिए अब्राहम के समान, परमेश्वर में भरोसा करके और परमेश्वर में ही भरोसा करके आगे अपने जीवन में बढ़े। वही हमें सब आशीष देगा, हमारी रक्षा करेगा। परमेश्वर आपके साथ रहे, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे चरणों के पास आते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। अब्राहम के जीवन से हमने सीखा कि वह तुझ पर भरोसा करता है, तू उसे बहुत आशीष देने की प्रतिज्ञा किया और आशीष भी दिया। हम भी उसी के समान तुझ में भरोसा करें और तेरे आशीष पाए और उसके लिए हम धन्यवाद दें। इस विनती को परमेश्वर मसीह के नाम से मांगते हैं, दया करके सुना ग्रहण करें, आमीन।
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800833231 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindirsamc@sudavenTIST.org।
मैं हूँ गौरव चौहान
और मैं हूँ सारा मंडोरा। AWR से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़े, तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।